الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو يتولى الصالحين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وهو يتولى الصالحين اور وہ اللہ تعالی زیادہ اونچا نہ کریں گے خود ہی ٹھیک ہو جائے گا آپ لوگ اب ایکٹیویٹی بند کریں گے تو پھر بات چلے گی وهو وہ اللہ تعالی یتولا کیا ہے متولی ہے سرپرست ہے کس کا صالحین کا تو آج کا عنوان کیا بنا اللہ نیکوں کا سرپرست ہے سرپرستی کہتے ہیں جو کوئی کسی کے نفع اور نقصان کا ذمہ وار بن جائے اس کو کہتے ہیں جی یہ فلاں اس کا سرپرست ہے مثلا ایک بچہ ہے وہ اس کا سرپرست اس کا باپ ہوتا ہے اس کے والدین ہوتے ہیں اگر یہی بچہ باہر جائے اور جا کر کسی کی ونڈو کا شیشہ توڑ دے اڑوس پڑوس کا تو لوگ بچے کے پیچھے نہیں دوڑتے بلکہ اس کے سرپرست کے پیچھے دوڑتے ہیں کہتے ہیں جی اس کے باپ کو بتائیں اور اس سے اس کا خرچہ وصول کریں اسی طرح اگر کوئی فیملی حج پر جا رہی ہو اگر ایک فیملی حج پہ جا رہی ہو جس میں اس کے بڑے والدین بھی ہیں بچے بھی ہیں تو کسی بچے سے پوچھیں کہ بھئی آپ کہاں جا رہے ہیں وہ جواب دے گا میں حج پہ جا رہا ہوں تو کوئی اس کا دوست پوچھے گا کہ تم نے پاسپورٹ بنوا لیا ہے تو وہ جواب دے گا جی میں ابو کے ساتھ جا رہا ہوں یعنی وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ مجھے پاسپورٹ بنوانے کی ضرورت نہیں ہے میرے ابو خود ہی بنوا لیں گے وہ کہے گا اچھا حج کے لیے تو بھئی پیسے بھی چاہیے وہاں پر تمہارے پاس کوئی پیسے ہیں وہ جواب دے گا میں ابو کے ساتھ جا رہا ہوں وہ کہے گا حج پہ جا رہے ہو رہو گے کہاں کوئی ہوٹل کا انتظام کوئی وہاں جا کے کھانے پینے کا کوئی انتظام وہ کہے گا آپ کو بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی میں ابو کے ساتھ جا رہا ہوں تو ہر بات کا جواب میں ابو کے ساتھ جا رہا ہوں بالکل اسی طرح اللہ رب العزت صالحین کو آفر کر رہے ہیں یا یوں سمجھیں کہ صالحین کے بارے میں یہ اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں کہ جو صالح بن جائے گا اس کی سرپرستی اللہ رب العزت فرمائیں گے وَهُوَ يَتَوَلَّ الصَّالِحِينَ किसी के बच्चे को थप्पड़ मारे तो वापसी थप्पड़ कौन मारता है? उसका अबू मारता है। वो आएगा, तुमने कैसे मेरे बच्चे को मारा, तुम्हें जरूरत कैसे हुई, तुमने इसकी तरफ देखा ही क्यों? तो उसकी लड़ाई कौन लड़ता है? उसका अब्बू लड़ता है। जो सालेह बन जाता है इसकी लड़ाई भी अल्लाह लड़ते हैं। तारीख गवाह है, जिस किसी ने अल्लाह वालों को तकलीफ दी, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस बंदे की का जो बदला है खुद लिया। बेशुमार मिसालें कायम हैं। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के बारे में कहा जाता है कि आपसे लोग बहुत जेलस थे, क्योंकि जब अल्लाह रब्बुल इज्जत किसी को कोई खूबी अता करता है तो उस खूबी की वजह से लोग उससे जेलस हो जाते हैं, हसद करते हैं। जैसे आदम अलैहि सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खूबी अदा की कि उनको जमीन पर अपना खलीफा बनाकर भेजा, तो शयातीन को इस बात पर जलसी हो गई और उन्होंने कहा कि आदम कैसे खलीफा बन गए। तो आदम अलैहि सलाम के साथ शैतान ने जलसी की। इसी तरह हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के पास एक बंदा आया, वो जलस था आपसे। उसने देखा कि इनकी वालदा जईफ है और वालिद का इंतकाल हो चुका है, तो मां की गाली जो है कोई छोटी गाली नहीं होती, उसको बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल होता है। लिहाजा उसने आकर कहा कि मैं चाहता हूं कि आपकी वालदा से निकाह करूं। अब था तो शरारती और बात ऐसी कर रहा था और पब्लिकली कर रहा था कि जी मैं आपकी वालदा से ऐसा वैसा ताल्लुक चाहता हूं, जबकि वो जईफ थी और इस उम्र से वो निकल चुकी थी। लेकिन इस बदबخت ने आपको ईजा पहुंचाने के लिए ऐसी बात कही। इमाम आजम रहमतुल्लाह बहुत जहीन इंसान थे, चुनाचे आपने सबर किया, आपको बहुत तकलीफ हुई इस वजह से। आपने फरमाया कि मेरी वालदा बालिग हैं और वो अपने फैसला खुद कर सकती हैं, मैं आपका पैगाम उन तक पहुंचा दूंगा। यानी उन्होंने उस बंदे से यूं शरी इतबार से फिकी इतबार से जान छुड़वाई और ऐसे अल्फाज अदा किए कि जिसका जवाब देकर आप रंजीदा कैफियत से, दुखी कैफियत से वहां से उठ के रवाना हुए घर की तरफ। यह बंदा मुस्कुराता हुआ उठा और यह भी अपने घर की तरफ जाने लगा। अल्लाह की शान, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वहीं इसको पकड़ लिया। इसके पेट में दर्द हुआ और राइट अवे इसकी डेथ हुई। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसको पकड़ लिया। हजरत इमाम आजम फरमाते हैं, उन्होंने उसकी तरफ देखा और फरमाया मेरे सब्र ने इसकी जान ले ली है। वहुवा यतवल्लस सालिहीन, सालिहीन का वो मुतवल्ली होता है। अगर कोई उन पर उंगली उठाता है तो फिर अल्लाह ताला वापसी थप्पड़ लगाता है। इसी तरह मेरे दोस्तों एक और वाकया है। एक बुजुर्ग थे, अपनी कैफियत से जा रहे थे, एक नौजवान जोड़ा नया शादीशुदा वो भी वहां पास से गुजर रहा था। इत्तफाक से वहां कीचड़ था, हजरत को भी कहीं जाना होगा, चुनाचे इन्होंने भी जल्दी से गुजरने की कोशिश की और वहां इनका पांव फिसला और कीचड़ उछला और उस जोड़े की जो मर्द था उसकी बीवी के कपड़ों के ऊपर सारा कीचड़ जा लगा। जैसे हमारे यहां स्नो के बाद सारा कीचड़ हो जाता है, तो अगर कोई आदमी जल्दी जल्दी वहां से गुजरने की कोशिश करे तो वो दूसरों के कपड़े भी खराब कर देता है। अब क्योंकि ये नया जोड़ा था और नया नया, तो फिर आपको पता ही है कि वो इश्क चढ़ा होता है, लिहाजा नौजवान को गुस्सा आया और उसने बुजुर्ग के चेहरे पर थप्पड़ लगाया कि तुम देखकर नहीं चलते, आपने मेरी बीवी के कपड़ों को खराब किया, सारा कीचड़ मल दिया। अल्लाह वाले साबर होते हैं, शुक्रगुजारी करते हैं। आप आगे निकल गए लेकिन दिल बड़ा गमगीन हुआ कि मैंने कौन सा जानबूझ के किया था। अल्लाह की शान, पास ही एक कैफे था। हमारे मुल्कों में सड़कों के किनारे छोटे छोटे से लकड़ी के जो है कैबिन से बने होते हैं और उसी में वो चाय वगैरह बना रहे होते हैं और लोग जो है उसके पास ही बैठ जाते हैं और चाय पीते हैं। तो सड़क के किनारे ऐसा एक कैबिन बना हुआ था और उसने जब देखा कि एक नेक आदमी गमजदा कैफियत में, दुखी कैफियत में यहां से गुजर रहा है, वो कोई अल्लाह तरस बंदा था, उसने फौरन सोचा कि मैं क्यों ना इनको अपने पास बुलाऊं, खिदमत करूं और मुझे सवाब मिलेगा। लिहाजा वो फौरन गया और उसने कहा, हजरत जा तो रहे हैं, एक कप चाय का ही पी ले आप हमारे पास। कहते ये वो बुजुर्ग कहने लगे, अल्लाह मियां वाह तेरी शान, अजीब निराली शान है, कभी थप्पड़ लगाता है कभी गरम गरम चाय पिलाता है। तो ये उनकी एक तफवीज थी कि 100% अल्लाह के सुपुर्दगी थी उनके ऊपर। थप्पड़ लगा तो तब भी महसूस किया कि अल्लाह की मर्जी से हुआ है, वरना कौन लगा सकता था। और जब चाय पिलाने वाला खुशामद करके चाय पिला रहा है तो समझ रहे हैं कि अल्लाह ही ये चाय भी पिलवा रहे हैं, मखलूक पर उनकी नजर नहीं होती। खैर बैठ गए, चाय नोश करने लगे। इतनी देर में एक आदमी दौड़ा दौड़ा आया और आके कहता है कि हजरत वो जो जोड़ा आपके पास से गुजरा था और उस बंदे ने आपके थप्पड़ भी लगाया था, आपने उसको बद्दुआ दे दी। तो इन्होंने कहा भी मैंने तो उसको कोई बद्दुआ नहीं दी, तुम काहे को मुझे झगड़ रहे हो और तुम कहां से आ गए। कहने लगा मैं भी इत्तफाक से आपको दूर से खड़ा देख रहा था, आपने लगता है उसको बद्दुआ दी है। उन्होंने कहा भी मामला तो बताओ, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। कहने लगा आप तो आगे निकल आए, वहां कीचड़ था, इस बंदे का पांव फिसला और पास ही एक पत्थर था, उस पत्थर पे उसका सर लगा और वहीं उसको मौत आ गई। तो सल्लल्लाहु वाले ने उनको समझाया कि देखो मामला कुछ इस तरह से है, उसने जो मुझे मारा था वो अपनी महबूबा की वजह से मारा था, उसके कपड़े खराब हुए थे, उसको गुस्सा आया था और उसने मुझे मारा था। और जो अल्लाह वाले होते हैं इनसे अल्लाह प्यार करता है, जो उसको थप्पड़ मारता है तो परवरदिगार भी उसको वापसी थप्पड़ लगाता है, और परवरदिगार का थप्पड़ फिर ऐसे ही होता है। वह हुआ यतवल्ल सालिहीन, जो सौले बन जाते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत उनका सरपरस्त बन जाता है। पूरा एक मजमून है सौले कैसे बने, अल्लाह ने चाहा तो उस मजमून को वाजे करेंगे किसी वक्त। मुख्तसर सी इसकी डेफिनेशन ये समझ लें कि सौले बनने के लिए बहुत ज्यादा इबादात की जरूरत नहीं होती, लोग ये समझते हैं शायद सारी सारी रात जागना पड़ेगा, लंबी लंबी नमाजें पढ़नी पड़ेंगी और ढेर सारी तस्बीह मारनी पड़ेगी। नहीं भाई, सालेह बनने के लिए जो फराइज हैं, वाजिबात हैं, इनको अदा करना पड़ता है और इसके साथ साथ अल्लाह को नाराज करने वाले सारे काम छोड़ने पड़ते हैं। जो बंदा अल्लाह को नाराज करना छोड़ देता है, यानी गुनाह करना छोड़ देता है, उसको सालहीन के सिफ्त में लिख दिया जाता है। कहते जी ये बंदा नेक है, क्या मतलब है नेक है? क्या करता है? गुनाहों से बचता है, गुनाह नहीं करता। आज की मुसीबत यही है, नमाजें भी पढ़ते हैं और फिल्म बीनी भी करते हैं, टीवी पे भी बैठना बहुत जरूरी होता है, खबरें देखनी है जी भाई, खबरें जो देख रहे हो वो तुम्हारी फूफी खबरें बता रही है जिसको बैठे हुए तुम देख रहे हो। भाई ना महरम है, खुदा का खौफ करो। आपने इतने घंटे बैठ के देखा, बड़ा छोटा सारे बैठकर जो है नामहरम को तक रहे होते हैं और सामने किसी की बच्ची नाच रही होती है, गैरत नहीं आती? और बाजू में अपनी बच्ची भी बैठी होती है, ये क्या है जी? हमने जी वो ड्रामा देखा है। ड्रामा देखा नहीं है, तुमने ड्रामा किया है, सारे घर वालों को बिठाकर तुमने एक ड्रामा किया है। तो भाई ये ड्रामा छोड़ना पड़ेगा। इसी तरह रोजी रोटी का धंधा आता है, झूठ बोलते हैं, खरे माल की बजाय खोटा माल देते हैं। तो ये क्या होता है? नमाजें भी चल रही हैं और साथ साथ गुनाह भी चल रहे हैं, तो इसकी वजह से इंसान सालेह नहीं बनता। सालेह बनने के लिए गुनाहों को छोड़ना पड़ता है। आइए कुछ मिसालें देखते हैं सालहीन की। बीबी मरियम अल्लाह की नेक बंदी, उनकी वालिदा ने मन्नत मानी कि मेरे यहां जो औलाद होगी मैं इसको अल्लाह के नाम पर मस्जिद के हवाले कर दूंगी, मस्जिद की खिदमत करेगी। चुनाचे उनको एक उम्मीद थी कि अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल फरमा ली है और मेरे यहां साथ जाहिर बेटा होगा, क्योंकि कबूलियत हुई है और अल्लाह ताला मुझे बेटा देगा, मैं उसको मस्जिद के हवाले करूंगी। अल्लाह की शान, जब औलाद हुई तो वो बेटी निकली। अब हैरान कि भाई बेटी हुई है तो बेटी को मैं मस्जिद के हवाले करूं, ये मस्जिद की खिदमत करे, नेक साले लोग हैं, अब इनकी औलाद जो है वो किस तरह वहां पर है? चुनाचे मस्जिद के जो उस वक्त जिम्मेवार लोग थे, जिनमें खास तौर पर हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम जो एक नबी थे, इन्होंने और बाकी लोगों ने कुर्रा अंदाजी की कि भाई देखते हैं किसकी जिम्मेवारी अल्लाह ताला ये देता है। तो हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम का कुर्रा निकला और उन्होंने इस जिम्मेवारी को लिया कि बीबी मरियम की जिम्मेवारी मेरे जिम्मे और मैं इनके रहने सहने खाने पीने का इंतजाम करूंगा। चुनाचे बीबी मरियम हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम जो उनके रिश्तेदार भी थे उनके हवाले कर दिया गया और बैतुल मुकद्दस के साथ एक हुजरा बना दिया गया और वहां उनको जो है रिहाइश दे दी गई। चुनाचे ये उनको खिलाते थे पिलाते थे और वहां नशो नुमा करते थे, उनकी तरबियत करते थे, हत्ता के बीबी बड़ी हो गई, पाकीजा माहौल में रहने वाली थी بس اس کے اندر ایک چھوٹی سی محراب سی بنائی ہوئی تھی جس میں آپ بیٹھ کر سارا سارا ٹائم عبادات کرتی تھیں، ذکر اذکار کرتی تھیں، اللہ کو یاد کرتی تھیں، اور اس خدشے سے کہ بھی کوئی ان کو نقصان نہ پہنچا دے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام جب کہیں ادھر ادھر جاتے تو باہر کمرے کو تالا لگا دیتے تھے تاکہ حفاظت رہے۔ بی بی نے اندر ویسے ہی عبادات میں وقت گزارنا ہوتا تھا، ان کی ایک روٹین بنی ہوئی تھی، تو جاتے ہوئے وہ تالا لگا دیتے، اور ان کی ضروریات کے ٹائم وہ تشریف لاتے، دروازہ کھولتے اور ان کو ان کی ضروریات کھانا پینا مہیا کرتے۔ ایک مرتبہ حضرت زکریہ علیہ السلام کو کہیں سفر پہ جانا ہوا اور اپنے ٹائم سے کچھ دیر ہو گئی، اب جب دیر ہوئی تو ان کو فکر لاحق ہوئی کہ میں تو کمرہ باہر سے بند کر کے آیا تھا اور بی بی کو نہ کوئی کھانا پہنچائے گا نہ پینا ہوگا، اور اندر ان کو فاقے ہوں گے، تکلیف ہوگی، پریشانی آئے گی۔ چنانچہ بے حد پریشان ہوئے اور وہاں جلدی جلدی تشریف لائے، دروازہ کھولا، اور اندر آ کے جب دیکھتے ہیں تو قرآن مجید اس قصے کو یوں بیان کرتا ہے، کلما دخل علیہا زکریہ، جب حضرت زکریہ اندر داخل ہوئے، یعنی اس کوٹھے میں، اس محراب والی جو جگہ بنی ہوئی تھی اس میں داخل ہوئے، وجد عندہا رزقہا، آپ نے وہاں پر دیکھا رزق، بے موسم پھل۔ آج تو ہر جگہ بے موسم پھل مل جاتے ہیں، اس زمانے میں تو نہ ریفریجریشن تھا، تو لہذا بے موسم پھل سردیوں میں آم، گرمیوں میں اورنجز، تو یہ ان یوزل بات تھی۔ حیران ہوئے، کہا یا مریم انا لکی ہاذا، یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں، بے موسم پھل پڑے ہوئے ہیں، کہاں سے آئے ہیں؟ حیرت سے پوچھتے ہیں۔ اللہ کے بندی کیا جواب دیتی ہیں؟ ہوا من عند اللہ، یہ جو ہیں اللہ کی طرف سے ہیں۔ کوئی تعجب نہیں ہوا، کوئی عجیب سی بات نہیں لگی ان کو، بس آرام سے کہہ دیا ہوا من عند اللہ، یہ تو اللہ کی طرف سے ہے۔ اب پوچھنے والا نبی ہے اور بتانے والی ولی ہے، ایک طالب علم کے ذہن میں سوال آ جاتا ہے کہ وہ نبی پوچھ رہا ہے یا مریم انا لکی ہاذا، یہ کیا ہے، عجیب سی چیز دیکھ رہا ہوں، اور ایک ولیہ یہ کہہ رہی ہے ہوا من عند اللہ، یہ تو اللہ کی طرف سے ہے۔ تو یہ بات کیا حضرت زکریا علیہ السلام کو سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے؟ تو بی بی تو اس اعتبار سے بڑی بات کہہ رہی ہے، اور نبی جو ہے وہ حیرت سے پوچھ رہا ہے کہ یہ کیا ہے۔ تو ایک طالب علم کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ معاملہ الٹا کیوں ہے۔ لو بھی بات سمجھنے کی کوشش کرو، ماشاءاللہ صوفی حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان حضرات کو تو بات خوب سمجھ میں آ جائے گی۔ جس وقت بندہ ذکر اذکار کی محنت شروع کرتا ہے، ذکر اللہ کی محنت شروع کرتا ہے، تو شروع کے دور میں اس کے اوپر بڑی کیفیات ہوتی ہے، بڑا واجد ہوتا ہے، بڑا اس کی کیفیت ہوتی ہے۔ اس کو صوفیہ کے ہاں कहा जाता है कि इस बंदे को उरूज हासिल हो रहा है उसके लताइफ से, अब ये आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रहा है अपने असल में वासल होने के लिए। और जब ये जाकर अपने असल पे जाके वासल होता है, एक उरूज इसको नसीब हो जाता है, इसको सैर इलल्लाह भी कहते हैं। वहां जब ये जाता है तो रूहानी इतबार से ये एक और आलम में चला जाता है, और उस आलम में क्योंकि फरिश्ते रहते हैं और वहां इसका वक्त जो है एक फनाइयत का गुजरता है, जब ये उस दौर में गुजर रहा होता है तो उस दौरान इसके ऊपर असबाब की कैफियत नहीं होती बल्कि फनाइयत की कैफियत होती है। बाहर पता नहीं कितने लोगों को समझ आई, लेकिन बाहर जिसको समझ आई अल्लाह उसको रहम फरमाए। तो वहां एक वक्त गुजारता है, इसलिए या इसकी मिसाल यूं भी समझ लें कि जो मजजूब होते हैं वो वहां जाकर ठहर जाते हैं, एक वक्त फिर आता है कि वहां से नजूल होता है, वापस ये सैर फिल अशिया में आता है, असबाब की जिंदगी गुजारता है, दोबारा लोगों में रहता है। तो ये जो ऊपर जाना और फनाइयत का हासिल होना और वहां उस कैफियत में रहना, उस दौरान ऐसी कैफियत का होना मुमकिन होता है। अंबिया हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम सैर फिल अशिया में मौजूद थे, जो कि आला मकाम था, नजूल पर थे, पब्लिक टॉक कर रहे थे कि आम जिंदगी में क्या होना चाहिए, जैसा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमाया कि आप आम सादा जिंदगी गुजारा करते थे। तो आम सादा जिंदगी गुजारा करते थे तो इसकी वजह क्या होती थी कि वो सैर फिशे में रह रहे होते थे, अपना जूता खुद गांठते थे, वो उस कैफियत में रह रहे होते थे। हालांकि अल्लाह के नबी ने मेराज पर सिदरतुल मुंतहा से आगे का सफर भी तय किया हुआ था, तो रूहानी एतबार से अल्लाह के नबी की क्या कैफियत होंगी। लेकिन खूबसूरती क्या चीज है कि आकर इतनी सादगी से रहे, इतनी आम जिंदगी गुजारे कि देखने वाले को पता ही ना चले कि यह भी कोई अल्लाह का वली है। जितना मकाम बुलंद होता है उतना अल्लाह का वली आम जिंदगी गुजारता है, उतना ज्यादा लोग धोखा खाते हैं कि यह भी कभी अल्लाह का वली हो सकता है। और यही धोखा अबू जहल ने खाया, कहते हैं बाजारों में जाते हैं, शॉपिंग भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, और उसके बाद कहते हैं जी मैं रसूल हूं। ये कैसी अजीब सी बात है, रसूल होते तो डिफरेंट एक्ट कर रहे होते, जैसे आज लोग जो है हर वक्त किसी अल्लाह वाले से करामतों की उम्मीदें लगा के बैठे होते हैं कि अगर अल्लाह का वली होता तो कोई करामत दिखाता, कोई कश्फ होता, कोई तमाशा होता। सबसे बड़ी कीमती चीज कि वो वापस आए और सादा जिंदगी गुजारे, ये उसका कमाल होता है। तो बीबी मरियम भी उसी हिसाब में फरमाती है हुआ मिन इंदिल्लाह, ये तो अल्लाह की तरफ से है। और हजरत ज़करिया क्या फरमा रहे हैं, या मरियम अन्ना लकी हाज़ा, ये क्या है, अजीब सी बात। तो फरमाया इन्नल्लाह यरज़ुकु मन यशाउ बिगैर हिसाब, जिसको अल्लाह चाहते हैं बगैर हिसाब के, बगैर किसी रूटीन के अल्लाह ताला उसको देते हैं। जरूरी नहीं है कि फल जो है वो दरख्तों पर ही लगेंगे, जरूरी नहीं है कि भाई आग जो है जलाएगी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए क्या फरमाया, ए आग हो जा तू सलामती वाली, बेहतरीन हो जा। अल्लाह के नबी हिजरत फरमाते हैं, गारे सौर में बैठे हुए हैं और दुश्मन पहुंच गया है लेकिन नहीं देख सकता, घर के दरवाजे पर दुश्मन जो है तलवारें लेकर खड़ा हुआ है, दरमियान में से गुजर जाते हैं, और नहीं देख सकता। वजह क्या है कि अल्लाह ताला जो है फिर वो उसका मुतवल्ली होता है, सरपरस्ती फरमाते हैं अल्लाह ताला। फकत हमें गुनाहों को छोड़ने की जरूरत है। बीबी हाजरा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की अहलिया, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनको लेकर चलते हैं, नहीं बताते कि कहां जा रहे हैं, बच्चे को भी लिया अम्मा को भी लिया, चले जी। सफर करते 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 कहां पर पहुंचे, गैर जी जरई, कुरान मजीद में ये अल्फाज इस्तेमाल किए, गैर जी जरई का मतलब होता है कि वो जगह जहां जरात ना होती हो, यानी जरात हो ही ना सकती हो, वो मकाम जहां पर जरात ना हो सकती हो, यानी ना वहां पर पानी है ना फल ना फूल ना पौधा, तो वहां जिंदगी रहने जिंदा रहने के असबाब ही खत्म हो गए। दूसरे सियारों में जाएं, यहां की तरह वो भी मिट्टी नजर आती है, पानी ना होने की वजह से गैर जी जरई जमीन होती है। वो दिखाते हैं जी इतनी सारी बड़ी सारा चांद है, जमीन है, हर चीज है, मिट्टी है, हर चीज है, वहां के पत्थर लेकर यहां पर साइंसदान आ जाते हैं, लेकिन पानी नहीं है, गैर जी जरई जगह है। अम्मा ने जिधर देखा होगा बड़े बड़े पहाड़ होंगे या तपती हुई रेत होगी, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा जी डेस्टिनेशन आ गई, आप सवारी से उतर जाएं, हम जा रहे हैं, सवारी ने आगे जाना है, आप यहां ड्रॉप। अम्मा ने कहा मुझसे शायद कसूर हो गया, गलती हो गई है, क्या हो गया, आप सोचे ना कि आप अपनी बेगम को ले जाए हाईवे पे और जाके एक जगह पे कहेंगे ओके जी स्टॉप, उतर जाए आप गाड़ी से, कहेंगे क्या बात है, खैर नाराजगी है, वैसे ही धक्का दे देना था, इतने दूर लाने की क्या जरूरत थी। तो अम्मा ने कहा कि मुझसे कोई गलती हो गई होगी, वही नबी है, जुल्म तो नहीं करेगा, मुझे यहां ड्रॉप करने का क्या मकसद है, ऑब्वियस बात है कि हम मर जाएंगे और क्या करेंगे, कितने दिन का खाना देके जा रहे हैं, एक दिन दो दिन का, ये गैर इज़र जमीन है, यहां छोड़ के जा रहे हैं, क्या वजह, क्यों छोड़ के जा रहे हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम कोई जवाब नहीं देते, दो दफा पूछा कोई जवाब नहीं मिला, तीसरी मरतबा अम्मा को ख्याल आया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम बिला वजह कोई काम नहीं करते, नबी की बीवी थी, नबी का मिजाज जानती थी, आज की औरत नहीं थी कि वो ताने देती, फौरन कहने लगी क्या अल्लाह का हुक्म है जो आप ऐसा कर रहे हैं, दुआएं मांगकर तो औलाद हुई थी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सिर्फ सर हिलाया और फरमाया कि जी हां, क्योंकि अल्लाह का हुक्म नहीं था कि इनसे कलाम किया जाए, इनको मजीद कोई वसीयत की जाए, कोई नसीहत की जाए, बस फरमाया जी। अम्मा के बारे में लिखा किताबों में कि यू पीछे पीछे दौड़ रही थी उनके साथ साथ उनके सवारी के, जो ही आपने सर हिलाया आपने अपने कदम को वहीं रोक दिया और आपके मुंह से उस वक्त अल्फाज निकले हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। हमारा सरपरस्त कौन है, अल्लाह, जिसने गैर जी जरई जमीन पर पहुंचवा दिया, बजाहिर कुछ असबाब नहीं है। अम्मा फरमाती है खुदा हाफिज। आप तशरीफ ले जाएं, अल्लाह हमारे लिए बहुत काफी है, हम जाया नहीं होंगे, ऐसे नहीं भेज दिया गया यहां पर, मारना होता तो वहीं मार देते, यहां भेजा किसी काम के लिए भेजा है। तो अम्मा पहचान गई, न रोई न पुकारा न कुछ कहा, फौरन ठहर गई, जो तोशा था इस्तेमाल किया, एक दिन लगा, दो दिन लगे, जो भी हुआ, जितना वक्त वो खाना पीना खत्म हो गया, आपको परेशानी हुई कि छोटा नन्ना बच्चा है, अब इसको कुछ खिलाना है पिलाना है, क्या करूं, कैसे खिदमत करूं, आखिर ये भी नबी की औलाद है। तो सफा पे चढ़ती हैं ताकि दूर तक देख सकूं कि कोई चीज है वहां पर। तो कुछ नजर नहीं आता, फिर वहां से चलती है, सफा की पहाड़ी के दरमियान एक गहराई आई, बच्चा नजर नहीं आ रहा, दौड़ती है वहां से मरवा की तरफ, मरवा पे चढ़ के हर तरफ देखती है, कुछ नजर नहीं आता, सात चक्कर यूं लगाए जिसे सात शौत कहते हैं। तो बाद में जब पलट के देखा तो बच्चे के पांव के पास से पानी निकल रहा था, पानी का चश्मा जमजम फूट निकला। दौड़ी हुई वापस आती है, खुश होती है, अल्लाह की मदद आ गई, अल्लाह हमारे सरपरस्त है, बच्चा पांव जहां रगड़ रहा था जिब्रील इस्लाम ने पर मारा और जमीन से जो है चश्मा फूट निकला। बीबी के उस वक्त खुशी के मारे आपने मिट्टी ली और एक किनारे किनारे मिट्टी के यूं बनाए और जबान से क्या कहा, जम 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 जम, ठहर ठहर ठहर, है पानी बहता न चला जाओ। फरमाया अगर बीबी ऐसा न करती तो ये पानी बहते बहते सारी दुनिया को लपेट में ले लेता, इतना पानी अल्लाह निकालते। लेकिन बीबी ने दुआ मांग दी कि ठहर 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 यहां पर, और सारी दीवार सी भी बना दी कि चल इतनी देर इतनी जगह पर ठहर जा। पानी का इंतजाम हो गया, पानी भी कोई आम पानी नहीं है, वो पानी जिसके अंदर सारी खुराक मौजूद है। अगर बंदा उस पानी पर जिंदा रहना चाहे तो वो अपनी जिंदगी गुजार सकता है, ऐसा पानी अल्लाह ने अता कर दिया। फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बाहर से काफिला भेज दिया, यमन के इलाके में एक फ्लड आया था और उसकी वजह से वहां के लोगों की जिंदगी, वहां पर रहना दूभर हो गई थी, मुश्किल हो गई थी। चुनाचे वहां के लोगों ने सोचा इर्द गिर्द चलते हैं, फाइंड आउट करते हैं, कोई और इलाका तलाश करते हैं ताकि हम वहां अपनी जिंदगी गुजार सकें। उनकी ये जरूरत थी क्योंकि वो इलाका डिस्ट्रॉय हो गया था कंप्लीटली। तो वो ढूंढते ढूंढते इस इलाके से गुजर रहे थे। ये जगह जो है ये एक सेंट्रल पॉइंट है पूरी वर्ल्ड का, इसको मरकज़े आलम भी कहा जा सकता है, वस्त आलम भी है, पूरी दुनिया का एक सेंट्रल पॉइंट है। लिहाजा ऐसा लगता था कि वो यहां से निकल के दूसरे किसी बर्रे आजम की तरफ जाना चाह रहे थे और ये शॉर्टकट था यहां से गुजरना। अरब जानते थे कि इस इलाके में पानी नहीं होता, लेकिन उन्होंने देखा कि कुछ परिंदे हैं जो नजर आ रहे हैं, उनको ताज्जुब हुआ कि परिंदों का यहां क्या काम, यहां तो पानी नहीं है। लिहाजा वो काफिला ढूंढता ढूंढता यहां आ पहुंचा और उन्होंने देखा कि एक बुढ़िया औरत वो भी बैठी है, नन्ना बच्चा भी है, पानी भी है। उन्होंने कहा कि यकीनन कोई नेक अल्लाह वाली है। उन्होंने इजाजत मांगी कि भाई आप हमें इजाजत दे दें कि मैं यहां, हम भी अपना यहां पड़ाव कर लें, यहां रिहायश अख्तियार कर लें। अम्मा ने कहा भी ठीक है, तुम रह सकते हो, तुम्हें इजाजत है, लेकिन एक बात याद रखना कि इस जमजम की मालिका मैं खुद होंगी। तुम कल ये नहीं करोगे कि इसके मालिक बन के बैठ जाओगे। उन्होंने डील कर ली और उन्होंने कहा कि जी हम यहां रहेंगे, आपको भी फायदा पहुंचाएंगे, इस कुएं से हम पानी भी पिया करेंगे, इस्तेमाल में भी लाएंगे। चुनाचे वहां एक बस्ती आबाद हो गई और बाहर से माशा अल्लाह वहां पर सप्लाई आनी शुरू हो गई। ये क्योंकि रास्ता था, लोग इस शॉर्टकट से गुजरते थे, अब इस सेंट्रल पॉइंट पे जो जी जरई जमीन थी, अगर यहां एक कुआं मिल जाए तो आप सोचे, यूं समझे कि यहां एक सर्विस स्टेशन बन गया और बाहर से इधर उधर काफले जो गुजरते थे उनके लिए अपना पानी भरना, यहां से दोबारा फायदा उठाना, कितना ये कीमती सर्विस स्टेशन बन गया। इसको कहते हैं कि अल्लाह ताला इस तरह से मुतवल्ली बन जाता है सालहीन का। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम, किस्सा आपने सुना हुआ है। मूसा अलैहिस्सलाम हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम के पास गए, फिर वो वहां से चले, कश्ती में बैठे, हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कश्ती में सुराख कर दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि भी ये तो अच्छा नहीं किया, तो उन्होंने उनको उसका जवाब दिया। अब ये जब कश्ती किनारे लगती है, फिर ये एक इलाके में पहुंचते हैं और वहां पर एक बस्ती में पहुंचते हैं। अब पहले जमाने में रेस्टोरेंट का रिवाज नहीं होता था। मुझे अपने बचपन में याद है कि हम मुल्तान शहर में जो रहते थे तो कम से कम 20-25 मील के फासले पर एक गांव था। अगर उस इलाके में जाना हो तो वहां पर कोई भी बाहर से खाना पीना नहीं मिलता था, सिर्फ और सिर्फ वहां के मकामी लोग अगर खिला पिला दे तो रोटी मिल जाती थी, वरना अगर किसी बंदे के पास रोटी नहीं है तो वो भूखा बैठता था। और अगर आप ये सोचें कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र अलैहिस्सलाम का जमाना, जबकि उस वक्त आबादी भी इतनी नहीं थी, दूर दराज बस्तियां होती थी, तो लिहाजा उस दौर के लोगों के अंदर ये एक रिवाज हो गया कि वो मेजबानी करते थे, मेहमानदारी करते थे। जो बस्ती वाले ज्यादा मेजबानी और मेहमानी करते थे, साफ जाहिर है उनकी इज्जत बढ़ जाती थी और मेहमान भी सोच समझ के जाते हैं कि जी रोटी मिलेगी तो जाएंगे। आप किसी के घर जाएं और रोटी ना पूछे, आपको चाय के कप ना पूछे, तो अगली दफा आप भी कहेंगे यार वो फलाना दोस्त बहुत अच्छा उधर जाया करेंगे। ऐसे ही होता है ना, जहां रोटी शोटी अच्छी मिले तो वहां लोग जाते हैं। तो जिन बस्तियों में मेजबानी का रिवाज होता था लोग वहां जाया करते थे, और जो मेजबानी नहीं करते थे लोग उन बस्ती वालों को ताने देते थे और बुरा समझते थे। चुनाचे जब ये दोनों बुजुर्ग उस बस्ती में पहुंचे तो उस बस्ती वालों ने दूसरे लफ्जों में इनकी मेजबानी नहीं की, इनको पानी भी नहीं पूछा। इनके कहने के बावजूद कि भाई हम सफर करके आ रहे हैं, जो कि हक बनता था उस दौर के रिवाज के मुताबिक, आज तो भाई मैकडॉनल्ड में चले जाएं, और उस दौर में तो वो कैफियत नहीं थी, उन्होंने इनकार कर दिया कि नहीं खिलाते पिलाते, रहना रहे जाना चले जाए, हमारे यहां ये रिवाज नहीं। अब इनको कितना दुख हुआ होगा, इतने दूर सफर करके आए, भूख भी लगी हुई है, थके भी हुए हैं, और ये अजीब लोग हैं, मेहमान को पूछते भी नहीं है और रिवाज के भी अगेंस्ट है ये बात। इसी दौरान हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम देखते हैं कि एक दीवार टूटी हुई है घर की। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहते हैं कि आइए इस दीवार को बनाएं, कहां पे भूख लगी हुई है, थके हुए हैं, और बस्ती वाले इतने रूढ़ हैं, भूख वो उन्होंने रोटी नहीं पूछी, पानी नहीं पूछा, आप यहां खड़े होकर कि दीवारें मुरम्मत करनी शुरू कर दे, बड़ी अजीब सी बात है। तो बाहर हज़रत सैयद अल्लाह इस्लाम ने उनको बताया कि हम क्यों दीवार बना रहे हैं। कुरान मजीद सूरह काफ के अंदर उस घर के बारे में कहा कि कान अबू हुमा सालिहन, कि उस घर में दो यतीम बच्चे रहते थे, उनके वालिद साहब कान अबू हुमा, उनके वालिद साहब अबू जो थे उनके वो कौन थे, सालिहन सालेह थे, नेक इंसान थे। लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम को और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को क्या ड्यूटी दे दी, इनकी दीवार बनाई। बाप सौले है, दुनिया से चला गया है, बच्चे यतीम हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत न सिर्फ बाप को पालते हैं बल्कि नस्ल को भी पाल के दिखा रहे हैं, नस्ल को भी पाल के दिखा रहे हैं। आज हम परेशान फिरते हैं, हम मरेंगे तो हमारे बच्चों का क्या होगा। वो अल्लाह के बंदे, तू साले बनेगा, अल्लाह तेरा मुतवल्ली होगा, तेरी भी अल्लाह ताला परवरिश करेगा, तुझे भी देगा, और न सिर्फ ये तेरी नस्लों को भी पालेगा। तू गुनाह तो छोड़, तू रब को नाराज करता है और उम्मीद लगाता है कि अल्लाह ताला तुझे मन व सलवा खिलाएगा। दोस्तों तवज्जो के साथ ये बात सुने, हमारा एक ताल्लुक है अपने मशायख के साथ, हमारा एक ताल्लुक है और इस ताल्लुक का नाम है सिलसिला आलिया नक्शबंदिया। आप हजरात इस आजिज की बातें सुनने के लिए यहां तशरीफ लाते हैं, ये आजिज अपनी शेख की सोबत में बैठता रहा और उनसे जाके फायदा उठाता है। मेरे शेख ने अपना वक्त अपने शेख के साथ गुजारा और उनके शेख ने जिस हस्ती के साथ वक्त गुजारा उनका नाम था हजरत अब्दुल मालिक सिद्दीकी रहमतुल्लाह। आइए आपको हजरत मालिक अब्दुल सिद्दीकी रहमतुल्लाह के हालात जिंदगी से एक वाक्य सुनाते हैं ताकि आपको ये कम से कम अंदाजा हो कि आप किसकी औलाद हैं। रूहानी भी औलाद होती है, एक जिस्मानी औलाद होती है, एक रूहानी औलाद भी होती है। आज जो हम इस जुल्मत के माहौल में पुरसकून होकर अल्लाह की बातें सुन रहे हैं, यह लगता है कि हमारे बड़ों की मांगी हुई दुआओं का सदका है। हकीकत में हमारा हाल भी उन दो यतीम बच्चों वाला है कि जिनको अल्लाह रब्बुल इज्जत आज तक पाल रहे हैं, और हम यहां बैठे हुए अपने उन बुजुर्गों के सदके अल्लाह अल्लाह करते बैठे। आप वाक्य सुन लें, आप फिर खुद फैसला फरमा लें। हजरत मालिक सिद्दीकी रहमतुल्लाह जो है, पार्टीशन से पहले जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक मुल्क था, अंग्रेज हुकूमत करता था, उस जमाने में दिल्ली के पास एक गांव में रहा करते थे और वहां पर इन्होंने एक मदरसा बनाया। कई सौ तुलबा वहां उस मदरसे में तालीम हासिल करते थे। हालात खराब हो गए और उसकी वजह से आपने असातिज़ा और तुलबा को हुक्म दिया कि भाई मदरसे से बाहर नहीं निकलना, अपने आप को इस मदरसे में कन्फाइंड रखा करो। डेंजरस सिचुएशन है, हालात अच्छे नहीं है। वजह क्या थी, हिंदू मुसलमान और सिखों की लड़ाइयां होती थी और उस इलाके में हिंदू सिख बहुत सारे रहा करते थे, लिहाजा उनको डर था कि कहीं किसी तालिब इलम की जान जाया ना हो जाए, किसी उस्ताद की बेहुर्मती ना हो, किसी को कोई जानी माली नुकसान ना हो जाए। चुनाचे اکثر طلباء اساتذہ مدرسے کے اندر کنفائنڈ رہتے تھے. ایک دن ایک استاد کو کوئی ضروری کام پڑا, حضرت کے پاس آئے, کہنے لگے حضرت میں نے کہیں جانا ہے, آپ مجھے اجازت دے دیں کہ میں اپنا کام جلدی سے کر کے آ جاتا ہوں. حضرت نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے چلے جاؤ, آخر کام کاج تو کرنے ہی پڑتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں چپکے چپکے سے نکلا اس انداز سے کہ زیادہ ادھر ادھر کسی کو پتہ نہ چلے. تو کہتے ہیں کہ جو ہی میں نکلا تھوڑا آگے پہنچا, گاؤں کے اندر ایک گلی سے میں گزر رہا تھا, میں نے جھانک جھونک کے دیکھا کہ کوئی بھی نہیں ہے, اور جو ہی میں گلی میں داخل ہوا تو اچانک ایک سکھ میرے سامنے آ گیا. کہتے ہیں اب میں نے سوچا پیچھے بھاگوں گا تب میرے پیچھا کرے گا, آگے بڑھوں گا تو اس کا سامنا ہوگا. پھر دل میں خیال آیا میں بھی بندہ ہوں اور یہ بھی ایک بندہ ہے, تو چلو بھائی کیا ہو گیا, ایک سے ایک کی مقابلہ ہو جائے گا تو بھگت لیں گے اس کو. تو کہتے ہیں ہمت کرتے ہوئے میں اس کے پاس سے گزرنے لگا, جو ہی میں اس کے پاس سے گزرنے لگا تو سکھ صاحب کہتے ہیں میاں جی تسی کوئی فوج منگائی ہوئی ہے؟ تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا ہاں خا چھیڑ چھاڑ کر رہا ہے کوئی, کہ تسی کوئی فوج منگائی ہے کہ بھئی آپ کے پاس کوئی ملٹری ہے؟ تو کہتے ہیں میں نے اگنور کیا آپ, تو میں تھوڑا اور آگے بڑھا تو سکھ صاحب نے پھر انٹرپٹ کیا, او میاں جی گل تو سنو, کیا بات ہے؟ اور تسی کوئی فوج منگا لی ہے؟ چکر کیا ہے بھائی کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہتا ہے جی ہندو جو دوسرے گاؤں کے تھے تین دفعہ مدرسے پہ حملہ کرنے آئے ہیں تلواروں اور نیزوں کے ساتھ, اور مدرسے کے پیچھے سے فوج نکل آتی ہے جن کے پاس بندوقیں ہوتی ہیں, اور تین دفعہ اس فوج نے ان کو بھگا دیا. تو بھائی آپ کو یہ فوج کہاں سے ملی ہوئی ہے مدرسے کے لیے؟ اب یہ استاد واپس تشریف لائے, جب انہوں نے آ کر حضرت مالک صدیقی رحمتہ اللہ علیہ کو بتایا کہ اس طرح وہ سکھ کہہ رہا تھا, آپ نے واپسی جواب میں یہ کہا میں نے بچوں کی ایسی تربیت کی ہے کہ ان میں کوئی بھی گناہ کبیرہ نہیں کرتا, اس کی وجہ سے گناہوں کو چھوڑنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے میری یہ مدد کی ہوئی ہے. وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ, اور وہ اللہ تعالی متولی بن جاتا ہے صالحین کے ساتھ. صالحین کون ہوتے؟ جو گناہوں کو چھوڑ دیتے ہیں. بات لمبے مراقبے اور لمبی عبادات کی نہیں چل رہی, وہ لوگ جو گناہوں کو چھوڑ دیتے ہیں, جو گناہ نہیں کرتے, صاف ظاہر ہے وہ فرائض ادا کرتے. کتنی عجیب بات ہے کہ ہم غیروں پر تو بھروسہ کر لیتے ہیں, ابا جان نے کوئی بات کہی تو ہم کہتے ہیں جی بہت اچھی بات ہے, ابا جان نے کہی ہے تو صاف ظاہر ہے ابو نے کہی ہے, بڑے بھائی نے کوئی بات کہہ دی کہ یار فکر نہیں کرو نو پرابلم, ہم کہتے ہیں جی ٹھیک ہے بڑے بھائی نے کہہ دی ہے, کسی چچا مامو نے کہہ دیا کہ نیور گیٹ ورڈ میں تمہارے سپورٹ کروں گا, نیا نیا بزنس ہے کوئی بات نہیں, ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں ضرور کرے گا, کسی باس نے کہہ دیا کہ میں تمہاری پروموشن کر دوں گا چھ مہینے ڈٹ کے محنت کرو کام کرو, تو ہم کہتے ہیں باس نے پرامس کیا ہوا ہے, اور اللہ اور رسول اللہ نے جنت کے وعدے کیے ہوئے ہیں, کہا جی اس کے نیچے نہریں بہتی ہیں, اس کے ایک لقمے کے اندر دنیا جہان کا مزہ سمو دیا, ہر ہر لقمے کے اندر تیرا ذائقہ بدلتا چلا جائے گا, تجھے درخت ملیں گے ایسے بہترین سجے ہوئے، تیرے پاس وہاں پر بڑے بڑے محلات ہوں گے، اس کے ارد گرد جو ہے چشمے بہ رہے ہوں گے، اور ان کے کناروں پر ڈائمنڈ اور روبیز اور جیولز پڑے ہوئے ہوں گے۔ تو ہم کہتے ہیں یہ کیسے ہوگا؟ کبھی نیلے آسمان کی طرف اپنی نگاہیں اٹھا کر تو دیکھو کتنا بلند ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کیا اس کو ہم نے کسی ستون سے باندھا ہوا ہے؟ ہم نے ہی تو بنایا ہے اس کو اتنا بڑا، اور پھر اس کے اندر جگمگاتے ہوئے رات کو ٹمٹماتے ہوئے ذرا ستاروں اور سیاروں کو تو دیکھو، کبھی مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو دیکھو، کبھی چودہویں کے چاند کو دیکھو، تمہیں پتہ چلے گا کہ جس نے یہ بنائے ہیں وہ کتنا بڑا ہے۔ اس بنانے والے نے وعدے کیے ہوئے ہیں قرآن عظیم الشان میں، اور بندہ یقین ہی نہیں کرتا۔ کہا جائے کہ سنت والی زندگی کو گزارو اور جی جاب چلی جائے گی، اللہ اکبر، رزق کون دیتا ہے؟ جاب والا دیتا ہے؟ کہاں سے انسان پلتا ہے؟ بتوں سے تجھے امیدیں، خدا سے نا امیدی، بتوں سے تجھے امیدیں خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ اور کیا ہوتا ہے کافر؟ اس کی مثال یوں سمجھیں، ایک اربوں پتی بندہ ہو، ملینر بلینر، اور اس کا بیٹا مارا مارا پھیر رہا ہو کہ مجھے کوئی جاب دے دے، اور کسی نے کہا جی چلو تمہیں جاب دیتے ہیں، تمہیں مہینے کا $1,000 دیا کریں گے۔ باپ کیا ہے؟ باپ بلینر ہے، ٹرمپ کا بیٹا ہے، ٹرمپ ہے نا وہ بندہ جس نے وہ ریسرچ بلڈنگ، اس کا بیٹا مینہٹن میں پھر رہا ہے، کہتا ہے جی جاب دے دو، کسی نے کہا جوتوں کی دکان تھی وہاں جا گھسا، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے جاب دیتے ہیں، جوتے شوتے اٹھایا کرنا، رکھنا کرنا، ادھر سب کام کرنا، صاف کرنا، کتنے پیسے دیں گے؟ جی $1,000 دیں گے۔ ٹرمپ کو پتا چلا کہ میرا بیٹا جوتوں کی دکان میں کام کرتا ہے، $1,000 وہ اس کو دیتے ہیں، وہ کیا کرے گا؟ بچے کے ماتھا چومے گا یا اس کو ناراض ہوگا کہ تو ہے کس کی اولاد؟ ذرا سوچ تو صحیح کہ تو مسلمان ہے، پروردگار کے خزانوں پر ذرا نظر تو ڈال کہ تیرا پروردگار کتنے خزانوں کا مالک ہے، اور تو کس کی نوکری کرتا ہے؟ پروردگار کے مخالف پارٹی کی، اور کس چیز کی نوکری کر رہا ہے؟ ایسے جیسے تو ان کے لیٹرینیں صاف کرتا ہے۔ کل متاع دنیا کلی، تو سارا دن سویر سے شروع ہوتا ہے، رات کر دیتا ہے، ایمانداری سے بتا تو کیا کما کے لے کے آتا ہے؟ تو بھائی بات یہ ہے، انبیاء کرام کہاں سے کھاتے تھے؟ اللہ کی جیب سے لے جا کرتے تھے۔ ان کو سیلری کہاں سے ملتی تھی؟ اللہ تعالیٰ ان کو پالتے تھے۔ قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی اللہ تعالیٰ انبیاء کا ذکر فرماتے ہیں تو اس کا کنکلوژن کیا کرتے ہیں؟ کہ وہ انبیاء لوگوں سے کہتے تھے کہ میں اس کا بدلہ تمہارے سے نہیں لیتا، میں کہاں سے لیتا ہوں؟ اللہ سے لیتا ہوں۔ مجھے تنخواہ کہاں سے ملتی ہے؟ اللہ سے تنخواہ ملتی ہے۔ اسی طرح جو لوگ نیک بن جاتے ہیں، جو گناہوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتے ہیں۔ ہمارے حضرت ایک بہت پیاری مثال سے اس بات کو واضح کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ دو گھوڑے ہیں، ایک گھوڑا ریس میں دوڑتا ہے، لوگ اس کے اوپر لاکھوں ڈالر کا جو ہے وہ شرط لگاتے ہیں کہ یہ گھوڑا جیتے گا، اور ایک گھوڑا ہے جو سامان اٹھاتا ہے۔ आप बताएं कि सामान उठाने वाला घोड़े की जो लाइफ होती है, क्या रेस में दौड़ने वाले घोड़े की वो लाइफ होती है? रेस में घोड़ा दौड़ने वाला एयर कंडीशन कमरे में खड़ा होता है, और सामान उठाने वाला घोड़ा बारिश हो धूप हो उसको बर्दाश्त करना पड़ता है। रेस में घोड़ा दौड़ने वाले को डॉक्टर आके चेक करता है, उसको छींक आ जाए तो डॉक्टर दौड़े दौड़े आते हैं कि जी वो बड़ा कीमती घोड़ा है, उसके लिए खास खाने तैयार किए जाते हैं कि कहीं ये खराब ना हो जाए, इसका कोई नुकसान ना हो जाए। वजह क्या होती है? इसने रेस जीत के दिखानी होती है। एक लड़ाई हो रही है और उस लड़ाई में भी सालहीन ने रेस जीत के दिखानी होती है, और वो लड़ाई पता है कौन सी है? वो शैतान ने अल्लाह ताला को चैलेंज किया था कि मैं दिखाऊंगा तेरे बंदे ये किसी काम के भी नहीं है, तो इनको खलीफा बना रहा है अल्लाह मियां, मैं साबित करूंगा कि ये इसकी अहलियत नहीं रखते। अल्लाह ने फरमाया कि अच्छा तू ऐसी बातें करता है, मैं क्या करूंगा, जो मेरे बंदे होंगे उन तक तो तू पहुंच ही नहीं सकेगा, मैं तो उनको तो कर लूंगा प्रोटेक्ट, और जो तेरी बात को सुनेंगे और तेरी इशारों पर नाचेंगे तो तेरे साथ उनको भी जहन्नम में डाल दूंगा। लिहाजा वो बंदे जो सालहीन होते हैं, जो प्रोटेक्टेड लाइफ गुजारते हैं, गुनाहों से बचते हैं, शरीयत की वो फॉलो करते हैं, अल्लाह के हुक्मों के ऊपर पाबंद रहते हैं, अल्लाह ताला उनको यूं समझे कि एक प्रोटेक्शन अता कर देते हैं और उनके वक्त को बर्बाद नहीं होने देते, उनकी एनर्जीज को वेस्ट नहीं होने देते, क्योंकि ये रेस जीतने वाला घोड़ा बन जाता है। अल्लाह ताला ने इस बंदे को शैतान और मलाइका को दिखाना होता है। तुम कहते थे कि ये वक्त जाया करेंगे, फूल करेंगे, खराबा करेंगे, और देखो ये किस तरह से गुनाहों से बचकर अपनी ख्वाहिशात को कंट्रोल करके ये किस तरह रेस को जीत रहे। तो शैतान भी फिर अफसोस करता है कि हाय ये निकल गया मेरे हाथों से, और फरिश्ते भी फिर उसके ऊपर ताज्जुब करते हैं कि हम फरिश्ते हैं और ये नफ्स वाला बंदा ये रातों को उठ उठ के अल्लाह से मांग रहा है। इसके सामने कोई गुजर जाए ये उसको देखता भी नहीं, परवाह ही नहीं करता। वजह क्या होती है कि परवरदिगार का हुक्म नहीं है। तन्हाई हो चाहे महफिल हो, इसके लिए अब एक बात है, क्योंकि ये समझता है वह हुआ माकुम ऐन माकुम, जाओ तुम्हारा परवरदिगार तुम्हारे साथ। इनको एक मकाम माइयत नसीब हो जाता है। भाई अल्लाह ताला की तो वो जात है, अपनों को छोड़ो, वो तो गैरों को भी देता है। जो उसके दुश्मन बने फिरते हैं, जिन्होंने शैतान पार्टी ज्वाइन की हुई है, अल्लाह ताला तो उनको भी रोज रोटी खिलाता है, उनको भी अल्लाह ने सेहत दी हुई है, ताकत दी हुई है, बड़े बड़े बोल बोलते हैं, हत्ता के उनका जो सरदार है शैतान है, अल्लाह ताला ने तो उसको भी मोहलत दे दी है जी। शैतान ने अल्लाह ताला ने इससे कहा कि अल्लाह मियां फिर अगर ऐसी बात है तो मुझे भी आप मोहलत दे दें क़यामत तक, मैं भी साबित करके दिखा दूंगा। अल्लाह ने फरमाया कि ठीक है। कि वो कह शैतान कैसे कहते हैं, रब्बी उन अंजरनी इला यौमी युबअसून, कि उस वक्त तक जब तक फैसला हो जाए क़यामत आ जाए उस वक्त तक आप मुझे मोहलत दे दें, मैं इस लड़ाई को लड़ के दिखाऊंगा और ये बात प्रूव करके दिखाऊंगा कि बंदा इस चीज का अहली नहीं है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मकाम महमूद अता फरमाया। क्यामत का दिन होगा مسلمان کافر جن ملائکہ سب موجود ہوں گے، اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کو مقام محمود عطا فرمائے گا۔ کسی ایک کتاب میں پڑھا کہ قیامت کا دن در حقیقت دن لگا ہے اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی شان دکھائیں، ورنہ تو نام اعمال کسی کے دائیں ہاتھ میں مل جائے گا، کسی کے بائیں ہاتھ میں مل جائے گا۔ وہ خود اپنی ویڈیو دیکھیں گے اور کہیں گے ہائے ہائے ہائے، یہ کیا ہے جس میں ہر چیز لکھی ہوئی ہے، ہر چیز موجود ہے، خود کرتے ہوئے دکھا دیا جائے گا، یہ تم کر رہے تھے نا۔ آج کل تو بہت آسان ہے اس کو سمجھنا، بالکل ایسے سمجھے سرویلنس کیمرہ لگا ہوا ہے اور بندے کو اس کی ویڈیو اس کو دکھائی جائے گی، یہ تو نے کیا، بندہ اس کو دیکھے گا اور اس میں واقعی ویڈیو میں تو کوئی چیز بھی نہیں چھٹتی۔ آج تو 3 ڈائمینشن آ گئے ہیں جی، دائیں بائیں آگے پیچھے سے دکھا رہی ہوگی کہ یہ تو کر رہا ہے، تو بندہ دیکھے گا کہے گا ہو ہو بڑی شرمندگی والی بات ہے۔ تو اس دن جو ہے اللہ رب العزت دکھائیں گے مقام محمود پر اپنے پیارے حبیب کو کہ یہ ہے خلافت، اس کو کہتے ہیں خلافت، اور اس خلافت کے اندر جتنی لوگ بھی شامل ہو جائیں گے، تمام انبیاء جو اس خلافت میں جرنیل کا رول ادا کرتے آئے ہیں، ان جرنیلوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر اس کے بعد وارث الانبیاء جو ان کی ساری فوج، یوں سمجھیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ یوں اٹھائے گا اوپر اور دکھائے گا کہ اے لوگوں دیکھو کہ یہ ہیں وہ لوگ جن کو ہم نے منصب خلافت عطا کیا ہے، انہوں نے خیر کو پھیلایا اور شر کو مٹایا، انہوں نے وہ لڑائی لڑی۔ یہ جو اللہ اللہ کرتے ہیں در حقیقت یہ اللہ رب العزت کو راضی اور خوش کرنے والے لوگ ہیں۔ اور بھائی صالحین کے لیے سب لوگ اپنی نماز میں دعا مانگتے ہیں، التحیات میں جب ہم بیٹھتے ہیں تو پڑھتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، اور شہادت سے پہلے کیا کہتے ہیں، السلام علینا ایہا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کہتے ہیں نا ہم سب لوگ۔ جب سے نماز فرض ہوئی قیامت تک جتنے لوگ نماز پڑھیں گے وہ اسی طرح صالحین کے لیے دعا کرتے رہیں گے۔ اتنی دعاؤں کو حاصل کرنا کیسے ممکن ہے کہ ہم بھی صالح بن جائیں، لہذا ہمیں کیا کرنا پڑے گا، ہمیں سب سے پہلے اپنا عقیدہ صحیح کرنا پڑے گا۔ عقیدے کے اندر اگر کوئی بھی فساد ہے، کوئی شرک ہے، بدعات ہیں، کوئی بھی ایسی بات ہے یا اللہ تعالی کی ذات و صفات اس سب کے بارے میں تفصیلات جانتے ہوئے، سب سے اہم ترین چیز اپنے عقیدہ صحیح کرنا، اور اس کے بعد رسالت کے اوپر ایمان لانا اور نبی کے سنتوں کے اوپر عمل کرنا، اور اسی کے اندر خیر کو سمجھنا، یہ نہ سمجھے کہ اس کی وجہ سے مجھے نقصان ہو جائے گا کوئی۔ اگر تھوڑی بہت تکلیف اٹھانی پڑتی ہے تو یہ سمجھو کہ عارضی تکلیف ہے، آخرت میں اللہ نے بڑا انعام رکھا ہوا ہے، اس وقت انسان سمجھے گا کہ بھائی میں نے بڑا اچھا سودا کیا۔ پھر اس کے بعد خوب اللہ تعالی کی عبادت کریں، اللہ کو راضی کریں عبادات سے، مخلوق کو راضی کریں خدمت سے، ماں باپ کی خدمت، رشتہ داروں کی خدمت، عزیز دوستوں کے ساتھ ہمدردی، بچوں کے ساتھ پیار، اپنی اہلیہ کے ساتھ معروف طریقے سے رہنا، معاشرت سے کہا جاتا ہے اپنی جاب کے اوپر ایماندار رہنا، اگر باس ہیں تو اپنے ملازمین کے ساتھ ہمدردی رکھنا، ان کے لیے خیر خواہی سے پیش آنا، یہ تمام چیزیں معاشرت کہلاتی ہیں۔ تو مخلوق کی خدمت کرنی ہے، اچھے اخلاق کو پیدا کرنا ہے۔ اچھا اخلاق کیا ہوتا ہے؟ نیت کا صحیح ہونا، اخلاص کا ہونا، اللہ کی رضا پر راضی رہنا، صبر کرنا، شکر کرنا، توکل کرنا، محبت کرنا، یہ ساری اچھی کوالٹیز ہیں۔ اسی طرح جھوٹ نہ بولنا، بہتان نہ باندھنا، کسی کے ساتھ اتنا غضبناک ہو کر اس کو اذیت نہ پہنچانا، تکبر نہ کرنا، عجب نہ کرنا، بغض نہ کرنا، لالچ نہ کرنا، دنیا کی محبت نہ کرنا، مال کی حوث نہ پیدا کر لینا، یہ سب کا سب گندا اخلاق ہوتا ہے۔ کرائٹیریا ہے، آج تو یہ کرائٹیریا بدلتے چلے جا رہے ہیں نا، تو ان کرائٹیریوں کو پڑھیں، سمجھیں اور اس پہ عمل کریں۔ اچھا اخلاق، اور اس کے بعد ارادے کے ساتھ گناہ چھوڑ دینا۔ غیر اختیاری طور پر انسان غلطی کر بیٹھتا ہے، لیکن پلاننگ کر کے ارادے کے ساتھ گناہ کرنا، فرمایا اس کو چھوڑ دو اور اپنی ساری امیدیں اللہ تعالی سے لگا لینا، تاکہ اللہ تعالی اس کا متولی بن جائے۔ تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے۔ جو بندہ اس طرح سے کر لیتا ہے تو پھر اللہ نیکوں کے متولی بن جاتے ہیں، سرپرست بن جاتے ہیں، اور صالحین کو تو ہمیشہ اللہ پر توکل کرنا چاہیے، اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ ہمارے اکابرین نے اسی طرح زندگی گزاری۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی اچھی زندگی گزار کر اس دنیا سے جائیں، تو ہمیں بھی یہ اچھی کوالٹیز کو پیدا کرنا پڑے گا۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔